بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا.
اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان اور رحم کرنے والا ہے. لوگو اپنے رب سے ڈرو جس نے تم کو ایک جان سے پیدا کیا اور اسی جان سے اس کا جوڑا بنایا اور ان دونوں سے بہت مرد اور عورت دنیا میں پھیلا دیئے. اس اللہ سے ڈرو جس کا واسطہ دے کر تم ایک دوسرے سے اپنے حق مانگتے ہو اور ناتے رشتوں کے سمبندھوں کو بگاڑنے سے بچو. یقین جانو کہ اللہ تم پر نگرانی کر رہا ہے.
وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا. وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا. وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا.
یتیموں کے مال ان کو واپس دو، اچھے مال کو برے مال سے نہ بدل لو، اور ان کے مال اپنے مال کے ساتھ ملا کر نہ کھا جاؤ، یہ بہت بڑا گناہ ہے. اور اگر تم کو اندیشہ ہو کہ یتیموں کے ساتھ انصاف نہ کر سکو گے تو جو عورتیں تمہیں پسند آئیں ان میں سے دو دو، تین تین، چار چار سے نکاح کر لو. لیکن اگر تمہیں اندیشہ ہو کہ ان کے ساتھ انصاف نہ کر سکو گے تو پھر ایک ہی پتنی رکھو، یا ان عورتوں کو اپنے دامپتیہ جیون میں لاؤ جو تمہارے قبضے میں آئی ہیں. بے انصافی سے بچنے کے لیے یہ زیادہ اچھا ہے. اور عورتوں کے مہر خوشی سے انیواری جانتے ہوئے ادا کرو. ہاں اگر وہ خود اپنی خوشی سے مہر کا کوئی حصہ تمہیں معاف کر دیں تو اسے تم مزے سے کھا سکتے ہو. اور اپنے وہ مال جنہیں اللہ نے تمہارے لیے زندگی قائم رکھنے کا سادھن بنایا ہے نادان لوگوں کو نہ سونپو، البتہ انہیں کھانے اور پہننے کے لیے دو اور انہیں نیک سجھاو دو.
وابتلوا اليتامى حتى اذا بلغوا النكاح فان آنستم منهم رشدا فادفعوا اليهم اموالهم ولا تاكلوها اسرافا وبدارا ان يكبروا ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم وكفى بالله حسيبا.
اور یتیموں کی آزمائش کرتے رہو یہاں تک کہ وہ نکاح کی عمر کو پہنچ جائیں، پھر اگر تم ان میں یوگیتا پاؤ تو ان کے مال ان کو سونپ دو. ایسا کبھی نہ کرنا کہ نیائے کی سیما کا الگھن کر کے اس بھے سے ان کے مال جلدی جلدی کھا جاؤ کہ وہ بڑے ہو کر اپنے حق کی مانگ کریں گے. یتیم کا جو سرپرست مالدار ہو وہ پرہیزگاری سے کام لے، اور جو غریب ہو وہ سامان्य ریتی کے انوسار کھائے. پھر جب ان کے مال انہیں سونپنے لگو تو لوگوں کو اس پر گواہ بنا لو، اور حساب لینے کے لیے اللہ کافی ہے.
للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا.
مردوں کے لیے اس مال میں حصہ ہے جو ماں باپ اور قریبی ناتے داروں نے چھوڑا ہو اور عورتوں کے لیے بھی اس مال میں حصہ ہے جو ماں باپ اور قریبی ناتے داروں نے چھوڑا ہو چاہے تھوڑا ہو یا بہت اور یہ حصہ اللہ کی اور سے نشچت ہے اور جب بانٹنے کے اوسر پر کٹمب کے لوگ اور یتیم اور محتاج آئیں تو اس مال میں سے ان کو بھی کچھ دو اور ان کے ساتھ بھلے مانوسوں کی سی بات کرو لوگوں کو اس بات کا خیال کر کے ڈرنا چاہیے کہ اگر وہ خود اپنے پیچھے بے بس بچے چھوڑتے تو مرتے سمے انہیں اپنے بچوں کے لیے کیسی کچھ آشنکائیں گھیرتی اس لیے چاہیے کہ وہ اللہ سے ڈریں اور ٹھیک بات کریں جو لوگ ظلم کے ساتھ یتیموں کے مال کھاتے ہیں واسطو میں وہ اپنے پیٹ آگ سے بھرتے ہیں اور وہ ضرور جہنم کی بھڑکتی ہوئی آگ میں جھونکے جائیں گے.
یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین فإن كن نساء فوق اثنتین فلہن ثلثا ما ترک وإن كانت واحدة فلها النصف ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث فإن كان له إخوة فلأمه السدس من بعد وصية يوصي بها أو دين آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله إن الله كان عليما حكيما.
تمہاری سنتان کے بارے میں اللہ تمہیں آدیش دیتا ہے کہ مرد کا حصہ دو عورتوں کے برابر ہے. अगर मरने वाले की उत्तराधिकारी दो से अधिक लड़कियां हों तो उन्हें तरके यानी छोड़ी हुई संपत्ति का दो तिहाई दिया जाए और अगर एक ही लड़की वारिस हो तो आधा तरका उसका है. अगर मरने वाले के औलाद हो तो उसके मां बाप में से हर एक को तरके का छठा हिस्सा मिलना चाहिए और अगर वो निसंतान हो और मां बाप ही उसके वारिस हों तो मां को तीसरा हिस्सा दिया जाए और अगर मरने वाले के भाई बहन भी हों तो मां छठे हिस्से की हकदार होगी. ये सब हिस्से उस समय निकाले जाएंगे जबकि वसीयत जो मरने वाले ने की हो पूरी कर दी जाए और कर्ज जो उस पर हो चुका दिया जाए. तुम नहीं जानते कि तुम्हारे मां बाप और तुम्हारी संतान में से कौन लाभ की दृष्टि से तुमसे ज्यादा करीब है. ये हिस्से अल्लाह ने निश्चित कर दिए हैं और अल्लाह यकीनन ही सब हकीकतों से वाकिफ और सब मसलहतों का जानने वाला है.
وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوْ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍّ
और तुम्हारी बीवियों ने जो कुछ छोड़ा हो उसका आधा हिस्सा तुम्हें मिलेगा अगर वे निसंतान हों, वरना संतान होने की स्थिति में तरके का एक चौथाई हिस्सा तुम्हारा है जबकि वसीयत जो उन्होंने की हो पूरी कर दी जाए और कर्ज जो उन्होंने छोड़ा हो चुका दिया जाए और वे तुम्हारे तरके में से चौथाई की हकदार होंगी अगर तुम निसंतान हो वरना तुम्हारे संतान वाले होने की स्थिति में उनका हिस्सा आठवां होगा इसके बाद की जो वसीयत तुमने की हो वो पूरी कर दी जाए और जो कर्ज तुमने छोड़ा हो वो चुका दिया जाए और अगर वो मर्द या औरत जिसका तरका बांटना है निसंतान भी हो और उसके मां बाप भी जिंदा ना हो मगर उसका एक भाई या एक बहन मौजूद हो तो भाई और बहन हर एक को छठा हिस्सा मिलेगा और भाई बहन एक से ज्यादा हों तो सारे तरके के एक तिहाई में वे सब शरीक होंगे जबकि वसीयत जो की गई हो पूरी कर दी जाए और कर्ज जो मरने वाले ने छोड़ा हो अदा कर दिया जाए शर्त यह है कि वो नुकसान पहुंचाने वाला ना हो ये आदेश हैं अल्लाह की ओर से और अल्लाह जानता देखता और सहनशील है
تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب
ये अल्लाह की निश्चित की हुई सीमाएं हैं जो अल्लाह और उसके रसूल का कहा मानेगा उसे अल्लाह ऐसे बागों में दाखिल करेगा जिनके नीचे नहरें बहती होंगी और उन बागों में वो हमेशा रहेगा और ये बड़ी सफलता है और जो अल्लाह और उसके रसूल की नाफरमानी करेगा और उसकी निर्धारित सीमाओं का उल्लंघन कर जाएगा उसे अल्लाह आग में डालेगा जिसमें वो हमेशा रहेगा और उसके लिए अपमानजनक सजा है
واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا واللذان يأتيانها منكم فآذوهما فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما إن الله كان توابا رحيما إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما
तुम्हारी औरतों में जो बदकारी कर बैठे उन पर अपने में से चार आदमियों की गवाही लो और अगर चार आदमी गवाही दे दें तो उनको घरों में बंद रखो यहां तक कि उन्हें मौत आ जाए या अल्लाह उनके लिए कोई रास्ता निकाल दे। और तुम में से जो ये काम कर बैठें उन दोनों को तकलीफ दो, फिर अगर वे तौबा करें और अपने को सुधार लें तो उन्हें छोड़ दो कि अल्लाह बहुत तौबा कबूल करने वाला और रहम करने वाला है। हां ये जान लो कि अल्लाह पर तौबा कबूल करने का हक उन्हीं लोगों के लिए है जो नादानी की वजह से कोई बुरा काम कर बैठते हैं और उसके बाद जल्दी ही तौबा कर लेते हैं। ऐसे लोगों की ओर अल्लाह अपनी मेहरबानी की निगाह से फिर ध्यान देता है और अल्लाह सारी बातों की खबर रखने वाला और गहरी समझ रखने वाला पूरा जानकार है। मगर तौबा उन लोगों के लिए नहीं है जो बुरे काम किए चले जाते हैं, यहां तक कि जब उनमें से किसी की मौत का समय आ जाता है उस समय वो कहता है कि अब मैंने तौबा की। और इसी तरह तौबा उनके लिए भी नहीं है जो मरते दम तक अधर्मी रहें। ऐसे लोगों के लिए तो हमने दर्दनाक सजा तैयार कर रखी है।
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذن منكم ميثاقا غليظا ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا।
ऐ लोगो जो ईमान लाए हो तुम्हारे लिए ये हलाल नहीं है कि जबरदस्ती औरतों के वारिस बन बैठो और ना ये हलाल है कि उन्हें तंग करके उस महर का कुछ हिस्सा उड़ा लेने की कोशिश करो जो तुम उन्हें दे चुके हो। हाँ अगर वे किसी खुली बदचलनी का काम कर बैठें तो जरूर तुम्हें तंग करने का अधिकार है। उनके साथ भले ढंग से रहो सहो, अगर वे तुम्हें पसंद ना हो तो हो सकता है कि एक चीज तुम्हें पसंद ना हो, मगर अल्लाह ने उसी में बहुत कुछ भलाई रख दी हो। और अगर तुम एक बीवी की जगह दूसरी बीवी ले आने की ठान ही लो तो चाहे तुमने उसे ढेर सारा माल ही क्यों ना दिया हो उसमें से कुछ वापस ना लेना। क्या तुम उसे झूठा कलंक लगाकर और खुला जुल्म करके वापस लोगे? और आखिर तुम उसे किस तरह लोगे जबकि तुम एक दूसरे से आनंद ले चुके हो और वे तुमसे दृढ़ प्रतिज्ञा करा चुकी हैं? और जिन औरतों से तुम्हारे बाप निकाह कर चुके हों उनसे हरगिज निकाह न करो, मगर जो पहले हो चुका सो हो चुका। वास्तव में ये एक अश्लील कर्म है, अप्रिय है और बुरा चलन है।
حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف إن الله كان غفورا رحيما.
तुम्हारे लिए हराम की गई हैं तुम्हारी माएं, बेटियां, बहन, फूफियां, मौसियां, भतीजियां, भांजियां और तुम्हारी वे माएं जिन्होंने तुम्हें दूध पिलाया हो और तुम्हारी दूध में सम्मिलित बहनें और तुम्हारी बीवियों की माएं और तुम्हारी बीवियों की लड़कियां जिनका तुम्हारी गोद में पालन पोषण हुआ है, उन बीवियों की लड़कियां जिनसे तुम्हारा सहवास हो चुका हो, वरना अगर सिर्फ विवाह हुआ हो और सहवास ना हुआ हो तो उन्हें छोड़कर उनकी लड़कियों से निकाह कर लेने में तुम्हारी कोई पकड़ नहीं है, और तुम्हारे उन बेटों की बीवियां जो तुम्हारे वीर्य से हों, और ये भी तुम्हारे लिए हराम है कि एक साथ इकट्ठा दो बहनों को निकाह में रखो, मगर जो पहले हो गया सो हो गया, अल्लाह बख्शने वाला और रहम करने वाला है.
والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة إن الله كان عليما حكيما.
और वे औरतें भी तुम्हारे लिए हराम हैं जो किसी दूसरे के निकाह में हों, अलबत्ता ऐसी औरतों की बात और है जो युद्ध में तुम्हारे हाथ आएं। ये अल्लाह का कानून है जिसका पालन तुम्हारे लिए अनिवार्य कर दिया गया है। इनके अलावा जितनी औरतें हैं उन्हें अपने मालों के द्वारा हासिल करना तुम्हारे लिए हलाल कर दिया गया है। शर्त यह है कि निकाह के घेरे में लेकर उन्हें सुरक्षित करो, न कि स्वच्छंद काम तृप्ति करने लगो। फिर जो दाम्पत्य जीवन का आनंद तुम उनसे लो उसके बदले में उनके मेहर अनिवार्य समझते हुए अदा करो, अलबत्ता मेहर निश्चित हो जाने के बाद आपस की रजामंदी से तुम्हारे बीच अगर कोई समझौता हो जाए तो इसमें कोई हर्ज नहीं, अल्लाह सब कुछ जानने वाला तत्वदर्शी है.
ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات والله أعلم بإيمانكم بعضكم من بعض فانكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن بالمعروف محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب ذلك لمن خشي العنة منكم وأن تصبروا خير لكم والله غفور رحيم.
और जो आदमी तुम में से इतनी सामर्थ्य न रखता हो कि कुलीन मुसलमान औरतों यानी मुहसनात से निकाह कर सके, उसे चाहिए कि तुम्हारी उन लौंडियों यानी दासियों में से किसी के साथ विवाह कर ले जो तुम्हारे कब्जे में हों और ईमान वाली हों। अल्लाह तुम्हारे ईमान को अच्छी तरह जानता है, तुम सब एक ही गिरोह के लोग हो, अतः उनके सरपरस्तों की इजाजत से उनके साथ निकाह कर लो और सामान्य नियम के अनुसार उनके मेहर अदा कर दो, ताकि वे निकाह की परिधि में सुरक्षित होकर रहें, स्वच्छंद काम तृप्ति न करती फिरें और न चोरी छिपे नाजायज संबंध बनाएं। फिर जब वे विवाह की परिधि में सुरक्षित हो जाएं और उसके बाद कोई अश्लील कर्म कर बैठें, तो उन पर उस सजा के मुकाबले में आधी सजा है जो खानदानी औरतों के लिए निर्धारित है। ये सुविधा तुम में से उन लोगों के लिए रखी गई है जिनको निकाह न करने से संयम के भंग हो जाने का भय हो, लेकिन अगर तुम सब्र करो तो ये तुम्हारे लिए अच्छा है और अल्लाह बख्शने वाला और रहम फरमाने वाला है।
يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم والله عليم حكيم والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا।
अल्लाह चाहता है कि तुम्हारे लिए उन रीतियों को स्पष्ट करे और उन्हीं रीतियों पर तुम्हें चलाए जिनका पालन तुमसे पहले के अच्छे लोग करते थे। वो अपनी दयालुता के साथ तुम्हारी ओर पलटना चाहता है और वो सब कुछ जानता और गहरी समझ रखता है। हाँ, अल्लाह तो तुम्हारी ओर दयालुता के साथ पलटना चाहता है, मगर जो लोग खुद अपनी वासनाओं के पीछे चल रहे हैं वे चाहते हैं कि तुम सीधे रास्ते से हटकर दूर निकल जाओ। अल्लाह तुम पर से पाबंदियों को हल्का करना चाहता है क्योंकि इंसान कमजोर पैदा किया गया है। ऐ लोगो, जो ईमान लाए हो, आपस में एक दूसरे के माल गलत ढंग से ना खाओ। लेन देन होना चाहिए आपस की रजामंदी से और खुद अपनी हत्या ना करो। विश्वास करो कि अल्लाह तुम पर दया रखता है। जो व्यक्ति जुल्म और ज्यादती के साथ ऐसा करेगा उसको हम जरूर ही आग में झोंकेंगे, और ये अल्लाह के लिए कोई कठिन काम नहीं है।
نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن واسألوا الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليما ولكل جعلنا موالي مما ترك الوالدان والأقربون والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم إن الله كان على كل شيء شهيدا।
अगर तुम उन बड़े बड़े गुनाहों से बचते रहो जिनसे तुम्हें रोका जा रहा है तो तुम्हारी छोटी मोटी बुराइयों को हम तुम्हारे हिसाब से हटा देंगे और तुमको इज्जत की जगह में दाखिल करेंगे। और जो कुछ अल्लाह ने तुम में से किसी को दूसरे के मुकाबले में ज्यादा दिया है उसकी तमन्ना ना करो। जो कुछ मर्दों ने कमाया है उसके अनुसार उनका हिस्सा है और जो कुछ औरतों ने कमाया है उसके अनुसार उनका हिस्सा। हाँ, अल्लाह से उसके अनुग्रह की दुआ करते रहो, यकीनन अल्लाह हर चीज का ज्ञान रखता है। और हमने हर उस तरके के हकदार मुकर्रर कर दिए हैं जो माँ बाप और करीबी रिश्तेदार छोड़ें। अब रहे वे लोग जिनके साथ तुम प्रतिज्ञाबद्ध हो तो उनका हिस्सा उन्हें दो, यकीनन हर चीज अल्लाह की निगाह में है।
بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَبَعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا.
مرد عورتوں کے معاملے میں ذمہ دار ہیں اس آدھار پر کہ اللہ نے ان میں سے ایک کو دوسرے کے مقابلے میں آگے رکھا ہے اور اس آدھار پر کہ پروش اپنے مال خرچ کرتے ہیں. اتہ جو بھلی عورتیں ہیں وہ آگیاکاری ہوتی ہیں اور مردوں کے پیچھے اللہ کی رکشہ اور سنرکشن میں ان کے ادھکاروں کی رکشہ کرتی ہیں. اور جن عورتوں سے تمہیں سرکشی کا بھے ہو انہیں سمجھاؤ, سونے کی جگہوں میں ان سے الگ رہو اور مارو. پھر اگر وہ تمہاری بات ماننے لگیں تو اکارن ان پر ہاتھ چلانے کے لیے بہانے تلاش نہ کرو. یقین رکھو کہ اوپر اللہ موجود ہے جو بڑا اور سروچ ہے. اور اگر تم لوگوں کو کہیں پتی پتنی کے سمبندھ بگڑ جانے کا اندیشہ ہو تو ایک فیصلہ کرنے والا مرد کے ناتے داروں میں سے اور ایک عورت کے ناتے داروں میں سے مقرر کرو. وے دونوں سدھار کرنا چاہیں گے تو اللہ ان کے بیچ میل کا راستہ نکال دے گا. اللہ سب کچھ جانتا اور خبر رکھتا ہے.
وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنْبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا.
اور تم سب اللہ کی بندگی کرو, اس کے ساتھ کسی کو ساجھی نہ بناؤ, ماں باپ کے ساتھ اچھا ویوہار کرو, ناتے داروں اور یتیموں اور محتاجوں کے ساتھ اچھا ویوہار کرو, اور پڑوسی ناتے دار سے, اپریچت پڑوسی سے, پہلو کے ساتھی اور مسافر سے, اور ان داس داسیوں سے جو تمہارے ادھکار میں ہوں احسان کا معاملہ رکھو. یقین جانو اللہ کسی ایسے ویکتی کو پسند نہیں کرتا جو ڈینگیں مارنے والا ہو اور اپنی بڑائی پر گرو کرے.
الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله من فضله وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا والذين ينفقون أموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا وماذا عليهم لو آمنوا بالله واليوم الآخر وأنفقوا مما رزقهم الله وكان الله بهم عليما إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤت من لدنه أجرا عظيما فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا.
اور ایسے لوگ بھی اللہ کو پسند نہیں ہیں جو کنجوسی کرتے ہیں اور دوسروں کو بھی کنجوسی پر ابھارتے ہیں اور جو کچھ اللہ نے اپنے انگرہ سے انہیں دیا ہے اسے چھپاتے ہیں. ایسے ناشکرے لوگوں کے لیے ہم نے رسوا کر دینے والا عذاب تیار کر رکھا ہے. اور وہ لوگ بھی اللہ کو پسند نہیں ہیں جو اپنے مال صرف لوگوں کو دکھانے کے لیے خرچ کرتے ہیں اور حقیقت میں نہ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اور نہ آخرت کے دن پر. سچ یہ ہے کہ شیطان جس کا ساتھی ہوا اسے بہت ہی برا ساتھ پراپت ہوا. آخر ان لوگوں پر کیا آفت آ جاتی اگر یہ اللہ اور آخرت کے دن کو مانتے اور جو کچھ اللہ نے دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے. अगर ये ऐसा करते तो अल्लाह से इनकी नेकी का हाल छिपा ना रह जाता। अल्लाह किसी पर जर्रा बराबर भी जुल्म नहीं करता। अगर कोई एक नेकी करे तो अल्लाह उसे दोगुना करता है और फिर अपनी ओर से बड़ा बदला देता है। फिर सोचो कि उस समय ये क्या करेंगे जब हम हर समुदाय में से एक गवाह लाएंगे और इन लोगों पर तुम्हें अर्थात मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गवाह की हैसियत से खड़ा करेंगे। उस समय वे सब लोग जिन्होंने रसूल की बात ना मानी और उसकी नाफरमानी करते रहे तमन्ना करेंगे कि क्या ही अच्छा होता कि धरती फट जाए और वे उसमें समा जाएं। वहां ये अपनी कोई बात अल्लाह से न छिपा सकेंगे।
या अय्युहा अल्लज़ीना आमनू ला तक़रबू अस्सलाता व अंतुम सुकारा हत्ता तअलमू मा तक़ूलून वला जुनुबन इल्ला आबिरी सबीलिन हत्ता तग्तसिलू وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إن الله كان عفوا غفورا ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يشترون الضلالة ويريدون أن تضلوا السبيل والله أعلم بأعدائكم وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا
أي لوگو جو ایمان لائے ہو جب تم نشے کی حالت میں ہو تو نماز کے قریب نہ جاؤ। नमाज उस समय पढ़नी चाहिए जब तुम जानो कि क्या कह रहे हो, और इसी तरह नापाकी की हालत में भी नमाज के करीब ना जाओ जब तक कि नहा धो ना लो। ये और बात है कि रास्ते से गुजरते हो और अगर कभी ऐसा हो कि तुम बीमार हो या सफर में हो या तुम में से कोई शौच करके आए या तुमने औरतों को हाथ लगाया हो और फिर पानी ना मिले तो पाक मिट्टी से काम लो और उससे अपने चेहरों और हाथों पर मसह कर लो, यानी हाथ फेर लो। बेशक अल्लाह नरमी से काम लेने वाला और बख्शने वाला है। तुमने उन लोगों को भी देखा जिन्हें किताब के इल्म का कुछ भाग दिया गया है। वे खुद गुमराही के खरीदार बने हुए हैं और चाहते हैं कि तुम भी गुमराह हो जाओ। अल्लाह तुम्हारे दुश्मनों को खूब जानता है और तुम्हारी सहायता और समर्थन के लिए अल्लाह ही काफी है।
من الذين هادوا يحرفون الكلم عن مواضعه ويقولون سمعنا وعصينا واسمع غير مسمع وراعنا ليا بألسنتهم وطعنا في الدين ولو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا واسمع وانظرنا لكان خيرا لهم وأقوم ولكن لعنهم الله بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم من قبل أن نطمس وجوها فنردها على أدبارها أو نلعنهم كما لعنا أصحاب السبت وكان أمر الله مفعولا إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما।
जो लोग यहूदी बन गए हैं उनमें कुछ लोग हैं जो शब्दों को उनके स्थान से फेर देते हैं और सत्य धर्म के खिलाफ चोट करने के लिए अपनी जबानों को तोड़ मरोड़ कर कहते हैं, हमने सुना मगर स्वीकार नहीं किया। और सुनिए, आप ऐसे नहीं कि कोई सुनाए और हमारी रियायत करें। हालांकि अगर वे कहते हमने सुना और हमने माना और सुनिए और हमारी ओर ध्यान दें, तो ये उन्हीं के लिए अच्छा था और ज्यादा सच्चाई का तरीका था, मगर उन पर तो असत्यवादिता के कारण अल्लाह की फिटकार पड़ी हुई है, इसलिए वे कम ही ईमान लाते हैं। ऐ वे लोगों जिन्हें किताब दी गई थी, मान लो उस किताब को जो हमने अब उतारी है और जो उस किताब की पुष्टि और समर्थन करती है जो तुम्हारे पास पहले से मौजूद थी। इस पर ईमान लाओ इससे पहले कि हम चेहरे बिगाड़कर पीछे फेर दें या उनको उसी तरह फिटकारा हुआ कर दें जिस तरह सप्त वालों के साथ हमने किया था। और याद रखो कि अल्लाह का आदेश लागू होकर रहता है। अल्लाह बस शिर्क यानी साझीदार बनाने ही को माफ नहीं करता, इसके सिवा दूसरे जितने गुनाह हैं वो जिसके लिए चाहता है माफ कर देता है। अल्लाह के साथ जिसने किसी और को साझी ठहराया उसने तो बहुत ही बड़ा झूठ रचा और बड़े सख्त गुनाह की बात की।
أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يُزَكُّونَ أَنفُسَهُمْ بَلِ اللَّهُ يُزَكِّي مَن يَشَاءُ وَلَا يُظْلَمُونَ فَتِيلًا انظُرْ كَيْفَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَكَفَى بِهِ إِثْمًا مُبِينًا।
तुमने उन लोगों को भी देखा जो अपने पवित्र आत्मा होने का बहुत दम भरते हैं, हालांकि पवित्रता तो अल्लाह ही जिसे चाहता है प्रदान करता है, और इन्हें जो पवित्रता नहीं मिलती तो वास्तव में इन पर जर्रा बराबर भी जुल्म नहीं किया जाता। देखो तो सही, ये अल्लाह पर भी झूठा इल्जाम घड़ने से नहीं चूकते और इनके खुले गुनहगार होने के लिए यही एक गुनाह बहुत है।
أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِنَ الْكِتَابِ يُؤْمِنُونَ بِالْجِبْتِ وَالطَّاغُوتِ وَيَقُولُونَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا هَؤُلَاءِ أَهْدَى مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا سَبِيلًا أُولَئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ وَمَن يَلْعَنِ اللَّهُ فَلَن تَجِدَ لَهُ نَصِيرًا।
क्या तुमने उन लोगों को नहीं देखा जिन्हें किताब के इल्म में से कुछ हिस्सा दिया गया है और उनका हाल ये है कि निराधार चीजों और ताहूत यानी फसादी को मानते हैं और अधर्मियों के बारे में कहते हैं कि ईमान लाने वालों से तो यही ज्यादा सही रास्ते पर हैं। ऐसे ही लोग हैं जिन पर अल्लाह ने लानत की है, और जिस पर अल्लाह लानत कर दे फिर तुम उसका कोई सहायक ना पाओगे। क्या हुकूमत में उनका कोई हिस्सा है? अगर ऐसा होता तो ये दूसरों को एक फूटी कौड़ी तक न देते। फिर क्या ये दूसरों से इसलिए ईर्ष्या करते हैं कि अल्लाह ने उन्हें अपने अनुग्रह से नवाज दिया? अगर ये बात है तो उन्हें मालूम हो कि हमने तो इब्राहिम की संतान को किताब और गहरी समझ दी और महान राज्य प्रदान कर दिया।
صد عنه وكفى بجهنم سعيرا إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب إن الله كان عزيزا حكيما والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا لهم فيها أزواج مطهرة وندخلهم ظلا ظليلا।
मगर उनमें से किसी ने माना और कोई उससे मुंह मोड़ गया, और मुंह मोड़ने वालों के लिए तो बस जहन्नम की भड़कती हुई आग ही काफी है, जिन लोगों ने हमारी आयतों को मानने से इनकार कर दिया है उन्हें जरूर ही हम आग में झोंकेंगे, और जब उनके बदन की खाल गल जाएगी तो उसकी जगह दूसरी खाल पैदा कर देंगे ताकि वे अच्छी तरह अजाब का मजा चखें। अल्लाह बड़ी सामर्थ्य रखता है और अपने फैसलों को व्यवहार में लाने की हिकमत को खूब जानता है। और जिन लोगों ने हमारी आयतों को मान लिया और अच्छे कर्म किए उनको हम ऐसे बागों में दाखिल करेंगे जिनके नीचे नहरें बहती होंगी, जहां वे हमेशा हमेशा रहेंगे और उनको पाकीजा पत्नियां मिलेंगी और उन्हें हम घनी छांव में रखेंगे।
تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا।
مسلمانو अल्लाह तुम्हें आदेश देता है कि अमानतों को अमानत वालों को सौंपो, और जब लोगों के बीच फैसला करो तो इंसाफ के साथ करो। अल्लाह तुमको निहायत अच्छी नसीहत करता है और यकीनन अल्लाह सब कुछ सुनता और देखता है। ऐ लोगों जो ईमान लाए हो, बात मानो अल्लाह की और बात मानो रसूल की और उन लोगों की जो तुम में से आदेश देने के अधिकारी हों। फिर अगर तुम्हारे बीच किसी मामले में झगड़ा खड़ा हो जाए तो उसे अल्लाह और रसूल की ओर फेर दो। अगर तुम वास्तव में अल्लाह और आखिरत के दिन पर ईमान रखते हो, यही एक सही कार्य प्रणाली है और परिणाम की दृष्टि से भी अच्छा है।
أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحَاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بِهِ وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُضِلَّهُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنكَ صُدُودًا।
اے نبی تم نے دیکھا نہیں ان لوگوں کو جو دعویٰ تو کرتے ہیں کہ ہم نے مان لیا ہے اس کتاب کو جو تمہاری اور اتاری گئی ہے اور ان کتابوں کو جو تم سے پہلے اتاری گئی تھیں, मगर चाहते ये हैं कि अपने मामलों का फैसला कराने के लिए बढ़े हुए फसादी की ओर जाएं, जबकि उन्हें फसादी से इनकार करने का आदेश दिया गया था। शैतान उन्हें भटकाकर सीधे मार्ग से बहुत दूर ले जाना चाहता है, और जब उनसे कहा जाता है कि आओ उस चीज की ओर जो अल्लाह ने उतारी है और आओ रसूल की ओर, तो इन मुनाफिकों यानी पाखंडियों को तुम देखते हो कि ये तुम्हारी ओर आने से कतराते हैं।
فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما।
फिर उस समय क्या होता है जब इनके अपने हाथों की लाई हुई मुसीबत इन पर आ पड़ती है, उस समय ये तुम्हारे पास कसमें खाते हुए आते हैं और कहते हैं कि अल्लाह की कसम, हम तो सिर्फ भलाई चाहते थे और हमारी नीयत तो ये थी कि दोनों गिरोहों में किसी तरह की संगति बैठ जाए। अल्लाह जानता है जो कुछ इनके दिलों में है। इनसे किनारा मत करो, इन्हें समझाओ और ऐसी नसीहत करो जो इनके दिलों में उतर जाए। इन्हें बताओ कि हमने जो भी रसूल भेजा है इसीलिए भेजा है कि अल्लाह की अनुमति से उसकी आज्ञा का पालन किया जाए। अगर उन्होंने ये नीति अपनाई होती कि जब ये अपने आप पर जुल्म कर बैठे थे तो तुम्हारे पास आ जाते और अल्लाह से माफी मांगते और रसूल भी इनके लिए माफी की प्रार्थना करते, तो यकीनन अल्लाह को माफ करने वाला और रहम करने वाला पाते।
ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما।
नहीं ऐ नबी, तुम्हारे रब की कसम, ये कभी ईमान वाले नहीं हो सकते जब तक कि अपने आपस के मतभेदों में ये तुमको फैसला करने वाला न मान लें। फिर जो कुछ तुम फैसला करो उस पर अपने दिलों में भी कोई तंगी ना पाएं, बल्कि स्वेच्छा पूर्वक स्वीकार कर लें। अगर हमने इन्हें आदेश दिया होता कि अपने आप को मारो या अपने घरों से निकल जाओ तो इनमें से थोड़े ही आदमी ऐसा करते। हालांकि जो नसीहत इन्हें की जाती है अगर ये उसे व्यवहार में लाते तो ये इनके लिए ज्यादा अच्छाई और ज्यादा जमाव का कारण सिद्ध होता, और जब ये ऐसा करते तो हम इन्हें अपनी ओर से बहुत बड़ा बदला देते और इन्हें सीधा रास्ता दिखा देते। जो लोग अल्लाह और रसूल की आज्ञा का पालन करेंगे वो उन लोगों के साथ होंगे जिन पर अल्लाह ने इनाम फरमाया है, अर्थात नबी, सच्चे लोग और शहीद और अच्छे लोग। कैसे अच्छे हैं ये साथी जो किसी को प्राप्त हों। ये वास्तविक अनुग्रह है जो अल्लाह की ओर से होता है, और हकीकत जानने के लिए बस अल्लाह ही का इल्म काफी है।
या अय्युहा الذين آمنوا خذوا حذركم فانفروا ثبات او انفروا جميعا وان منكم لمن ليبطئن فإن أصابتكم مصيبة قال قد أنعم الله علي إذ لم أكن معهم شهيدا ولئن أصابكم فضل من الله ليقولن كأن لم تكن بينكم وبينه مودة يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب فسوف نؤتيه أجرا عظيما।
اے لوگو جو ایمان لائے ہو مقابلے کے لیے ہر سمے تیار رہو، پھر جیسا افسر ہو الگ الگ ٹکڑیوں کے روپ میں نکلو یا اکٹھے ہو کر، ہاں तुम में कोई कोई आदमी ऐसा भी है जो लड़ाई से जी चुराता है। अगर तुम पर कोई मुसीबत आए तो कहता है कि अल्लाह ने मुझ पर बड़ा अनुग्रह किया कि मैं इन लोगों के साथ न गया, और अगर अल्लाह की ओर से तुम पर अनुग्रह हो तो कहता है और इस तरह कहता है मानो तुम्हारे और उसके बीच प्रेम का कोई संबंध था ही नहीं। कि क्या ही अच्छा होता कि मैं भी इनके साथ होता तो बड़ा काम बन जाता। ऐसे लोगों को मालूम हो कि अल्लाह के मार्ग में लड़ना चाहिए उन लोगों को जो आखिरत के बदले दुनियावी जिंदगी को बेच दें। फिर जो अल्लाह के मार्ग में लड़ेगा और मारा जाएगा या विजयी रहेगा उसे जरूर हम बड़ी मजदूरी प्रदान करेंगे।
لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا।
आखिर क्या कारण है कि तुम अल्लाह के मार्ग में उन बेबस मर्दों, औरतों और बच्चों के लिए ना लड़ो जो कमजोर पाकर दबा लिए गए हैं और फरियाद कर रहे हैं कि ए हमारे रब, हमको इस बस्ती से निकाल जिसके निवासी जालिम हैं और अपनी ओर से हमारा कोई समर्थक और सहायक पैदा कर दे। जिन लोगों ने ईमान का रास्ता अपनाया है वे अल्लाह के मार्ग में लड़ते हैं और जिन्होंने अधर्म का मार्ग अपनाया है वे बढ़े हुए फसादी की राह में लड़ते हैं। अतः शैतान के साथियों से लड़ो और यकीन जानो कि शैतान की चालें वास्तव में बहुत ही कमजोर हैं।
अलम तर इला الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية وقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا।
तुमने उन लोगों को भी देखा जिनसे कहा गया था कि अपने हाथ रोके रखो और नमाज कायम करो और ज़कात दो। अब जो उन्हें लड़ाई का आदेश दिया गया तो उनमें एक गिरोह का हाल ये है कि लोगों से ऐसा डर रहे हैं जैसा अल्लाह से डरना चाहिए या कुछ इससे भी बढ़कर। कहते हैं, ऐ हमारे रब, ये हम पर लड़ाई का आदेश क्यों लिख दिया? क्यों ना हमें अभी कुछ और मोहलत दी? इनसे कहो, सांसारिक जीवन पूंजी थोड़ी है और आखिरत एक अल्लाह से डरने वाले इंसान के लिए ज्यादा बेहतर है और तुम पर जुल्म एक जर्रा बराबर भी न किया जाएगा।
أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة وإن تصبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله وإن تصبهم سيئة يقولوا هذه من عندك قل كل من عند الله فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك وأرسلناك للناس رسولا وكفى بالله شهيدا من يطع الرسول فقد أطاع الله ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا।
रही मौत तो जहां भी तुम हो वो हर हाल में तुम्हें आकर रहेगी चाहे तुम कैसी ही मजबूत इमारतों में हो। अगर उन्हें कोई लाभ पहुंचता है तो कहते हैं कि ये अल्लाह की ओर से है और अगर कोई नुकसान पहुंचता है तो कहते हैं कि ऐ नबी ये आपके कारण है। कहो सब कुछ अल्लाह ही की ओर से है। आखिर उन लोगों को क्या हो गया है कि कोई बात उनकी समझ में नहीं आती। ए इंसान, तुझे जो भी भलाई हासिल होती है अल्लाह की कृपा से होती है, और जो मुसीबत तुझ पर आती है वो तेरी अपनी कमाई और करतूत के कारण है। ए मोहम्मद, हमने तुमको लोगों के लिए रसूल बनाकर भेजा है, और इस पर अल्लाह की गवाही काफी है। जिसने रसूल की आज्ञा मानी उसने वास्तव में अल्लाह की आज्ञा का पालन किया, और जो मुंह मोड़ गया तो बहरहाल हमने तुम्हें उन लोगों पर चौकीदार बनाकर तो नहीं भेजा है।
فإذا برزوا من عندك بيت طائفة منهم غير الذي تقول والله يكتب ما يبيتون فأعرض عنهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا।
वे मुंह पर कहते हैं कि हम आज्ञाकारी हैं, मगर जब तुम्हारे पास से निकलते हैं तो उनमें से एक गिरोह रातों को इकट्ठा होकर तुम्हारी बातों के खिलाफ मशविरे करता है। अल्लाह उनकी ये सारी कानाफूसियां लिख रहा है, तुम उनकी परवाह ना करो और अल्लाह पर भरोसा रखो, वही भरोसे के लिए काफी है। क्या ये लोग कुरान पर विचार नहीं करते? अगर ये अल्लाह के सिवा किसी और की ओर से होता तो इसमें बहुत कुछ बेमेल बयान पाया जाता।
وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلًا فَقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا تُكَلَّفُ إِلَّا نَفْسَكَ وَحَرِّضِ الْمُؤْمِنِينَ عَسَى اللَّهُ أَن يَكُفَّ بَأْسَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَاللَّهُ أَشَدُّ بَأْسًا وَأَشَدُّ تَنكِيلًا।
ये लोग जहाँ कोई निश्चिंतता या भय की खबर सुन पाते हैं उसे लेकर फैला देते हैं, हालांकि अगर ये उसे रसूल और अपने समुदाय के जिम्मेदार लोगों तक पहुंचाएं तो उससे ऐसे लोग बाखबर हो जाएं जो इनके बीच इस बात की योग्यता रखते हैं कि उससे सही नतीजा निकाल सकें। तुम लोगों पर अल्लाह का अनुग्रह और दयालुता न होती तो तुम्हारी कमजोरियां ऐसी थीं कि गिने चुने थोड़े लोगों के सिवा तुम सब शैतान के पीछे लग गए होते। अतः ऐ नबी, तुम अल्लाह की राह में लड़ो, तुम अपने आप के सिवा किसी और के लिए जिम्मेदार नहीं हो। अलबत्ता ईमान वालों को लड़ने के लिए उकसाओ, असंभव नहीं कि अल्लाह अधर्मियों का जोर तोड़ दे। अल्लाह का जोर सबसे अधिक प्रबल और उसकी सजा सबसे ज्यादा सख्त है।
من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها وكان الله على كل شيء مقيتا وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها إن الله كان على كل شيء حسيبا الله لا إله إلا هو ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه ومن أصدق من الله حديثا।
जो भलाई की सिफारिश करेगा वो उसमें से हिस्सा पाएगा, और जो बुराई की सिफारिश करेगा वो उसमें से हिस्सा पाएगा, और अल्लाह हर चीज पर निगाह रखने वाला है। और जब कोई आदर के साथ तुम्हें सलाम करे तो उसको उससे ज्यादा अच्छे ढंग से जवाब दो, या कम से कम उसी तरह। अल्लाह हर चीज का हिसाब लेने वाला है। अल्लाह वो है जिसके सिवा कोई ईश नहीं है। वो तुम सबको उस कयामत के दिन इकट्ठा करेगा जिसके आने में कोई संदेह नहीं, और अल्लाह की बात से बढ़कर सच्ची बात और किसकी हो सकती है।
فَمَا لَكُمْ فِي الْمُنَافِقِينَ فِئَتَيْنِ وَاللَّهُ أَرْكَسَهُمْ بِمَا كَسَبُوا أَتُرِيدُونَ أَنْ تَهْدُوا مَنْ أَضَلَّ اللَّهُ وَمَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا وَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ كَمَا كَفَرُوا فَتَكُونُونَ سَوَاءً فلا تتخذوا منهم أولياء حتى يهاجروا في سبيل الله فإن تولوا فخذوهم وقتلوهم حيث وجدتموهم ولا تتخذوا منهم وليا ولا نصيرا.
फिर ये तुम्हें क्या हो गया है कि मुनाफिकों यानी कपटाचारियों के बारे में तुम्हारे बीच दो मत पाए जाते हैं, हालांकि जो बुराइयां उन्होंने कमाई हैं उनके कारण अल्लाह उन्हें उल्टा फेर चुका है। क्या तुम चाहते हो कि जिसे अल्लाह ने सीधे रास्ते पर नहीं लगाया उसे तुम रास्ते से लगा दो, हालांकि जिसको अल्लाह ने रास्ते से भटका दिया उसके लिए तुम कोई रास्ता नहीं पा सकते। वे तो ये चाहते हैं कि जिस तरह वे खुद अधर्मी हैं उसी तरह तुम भी अधर्मी हो जाओ, ताकि तुम और वे सब समान हो जाएं। अतः उनमें से किसी को अपना मित्र ना बनाओ जब तक कि वे अल्लाह के रास्ते में घर बार छोड़कर ना आ जाएं। और अगर वे घर बार छोड़ने यानी हिजरत से बाज रहें तो जहां पाओ उन्हें पकड़ो और कत्ल करो, और उनमें से किसी को अपना दोस्त और मददगार ना बनाओ।
إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق أو جاءوكم حصرت صدورهم أن يقاتلوكم أو يقاتلوا قومهم ولو شاء الله لسلطهم عليكم فلقاتلوكم فإن اعتزلوكم فلم يقاتلوكم وألقوا إليكم السلم فما جعل الله لكم عليهم سبيلا ستجدون آخرين يريدون أن يأمنوكم ويأمنوا قومهم كلما ردوا إلى الفتنة أركسوا فيها فإن لم يعتزلوكم ويلقوا إليكم السلم ويكفوا أيديهم فخذوهم وقتلوهم حيث ثقفتموهم وأولئكم جعلنا لكم عليهم سلطانا مبينا.
हाँ, उन मुनाफिकों यानी कपटाचारियों से इस आदेश का संबंध नहीं जो किसी ऐसी कौम से जा मिलें जिसके साथ तुम्हारा समझौता है। इसी प्रकार उन मुनाफिकों यानी कपटाचारियों का मामला भी इससे अलग है जो तुम्हारे पास आते हैं और लड़ाई से उनका मन खिन्न हो चुका है, न तुमसे लड़ना चाहते हैं और ना अपनी कौम से। अल्लाह चाहता तो ऐसा करता कि वे तुम पर छा जाते और वे भी तुमसे लड़ते। अतः अगर वे तुमसे किनारा खींच लें और लड़ने से बाज रहें और तुम्हारी ओर सुलह और शांति का हाथ बढ़ाएं, तो अल्लाह ने तुम्हारे लिए उन पर हाथ बढ़ाने की कोई राह नहीं रखी है। एक और तरह के मुनाफिक तुम्हें ऐसे मिलेंगे जो चाहते हैं कि तुमसे भी निर्भय होकर रहें और अपनी कौम से भी, मगर जब कभी उपद्रव का अवसर पाएंगे उसमें कूद पड़ेंगे। ऐसे लोग अगर तुम्हारे मुकाबले से बाज न रहें और सुलह और शांति तुम्हारे सामने न रखें और अपने हाथ न रोकें, तो जहां वे मिलें उन्हें पकड़ो और मारो। उन पर हाथ उठाने के लिए हमने तुम्हें खुली सनद दे दी है।
وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَّدَّقُوا فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِّنَ اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما.
किसी ईमान वाले का ये काम नहीं है कि दूसरे ईमान वाले को कत्ल करे, ये और बात है कि उससे चूक हो जाए, और जो आदमी किसी ईमान वाले को गलती से कत्ल कर दे तो इसके गुनाह का कफारा ये है कि एक ईमान वाले आदमी को गुलामी से आजाद करे और जो कत्ल हुआ उसके वारिसों को इसका खून बहा दे, ये और बात है कि वे खून बहा को छोड़ दें। लेकिन अगर वो मुसलमान कत्ल होने वाला किसी ऐसी कौम से था जिससे तुम्हारी दुश्मनी हो तो इसका कफवारा एक ईमान वाले गुलाम को आजाद करना है, और अगर वो किसी ऐसी गैर मुस्लिम कौम का आदमी था जिससे तुम्हारा समझौता हो तो उसके वारिसों को खून बहा दिया जाएगा और एक ईमान वाला गुलाम आजाद करना होगा। फिर जो गुलाम ना पाए वो लगातार 2 मास के रोजे रखे। ये इस गुनाह से तौबा करने का तरीका है, और अल्लाह सब कुछ जानने वाला और गहरी समझ वाला है। रहा वो आदमी जो किसी ईमान वाले का जानबूझकर कत्ल करे तो उसकी सजा जहन्नम है जिसमें वो हमेशा रहेगा, उस पर अल्लाह का गजब और उसकी लानत है, और अल्लाह ने उसके लिए कठोर अजाब तैयार कर रखा है।
يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا فعند الله مغانم كثيرة كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا إن الله كان بما تعملون خبيرا.
اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جب تم اللہ کے راستے میں لڑنے کے لیے نکلو تو دوست اور دشمن میں انتر کرو، और जो तुम्हें सलाम करे उसे तुरंत न कह दो कि तुम ईमान नहीं रखते। अगर तुम सांसारिक लाभ चाहते हो तो अल्लाह के पास तुम्हारे लिए बहुत से हाथ आने वाले माल हैं। आखिर इसी हालत में तुम खुद भी तो इससे पहले रह चुके हो, फिर अल्लाह ने तुम पर एहसान किया, अतः जांच परख से काम लो। जो कुछ तुम करते हो अल्लाह को उसकी खबर है।
لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة وكلا وعد الله الحسنى وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما درجات منه ومغفرة ورحمة وكان الله غفورا رحيما.
مسلمانوں میں سے وہ لوگ جو بنا کسی کارن کے گھر بیٹھے رہتے ہیں، اور وہ جو اللہ کے مارگ میں جان اور مال سے جان توڑ کوشش کرتے ہیں، دونوں کی حیثیت سمان نہیں ہے۔ اللہ نے بیٹھنے والوں کی اپیکشا جان اور مال سے جہاد کرنے والوں کا درجہ بڑا رکھا ہے، یدھیپی ہر ایک کے لیے اللہ نے بھلائی ہی کا وعدہ فرمایا ہے، मगर उसके यहाँ जान तोड़ कोशिश करने वालों की सेवाओं का बदला बैठने वालों से बहुत ज्यादा है। उनके लिए अल्लाह की ओर से बड़े दर्जे हैं और क्षमादान और दयालुता है, और अल्लाह बड़ा क्षमाशील और दया करने वाला है।
إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله وكان الله غفورا رحيما।
जो लोग अपने आप पर जुल्म कर रहे थे उनकी आत्माओं को जब फरिश्तों ने खींचा तो उनसे पूछा कि ये तुम किस हाल में पड़ गए थे। उन्होंने जवाब दिया कि हम धरती में कमजोर और बेबस थे। फरिश्तों ने कहा, क्या अल्लाह की धरती विस्तृत न थी कि तुम उसमें घर बार छोड़कर कहीं चले जाते। ये वे लोग हैं जिनका ठिकाना जहन्नम है, और वो बड़ा ही बुरा ठिकाना है। हाँ, जो मर्द औरतें और बच्चे वास्तव में बेबस हैं और निकलने का कोई मार्ग और साधन नहीं पाते, बहुत संभव है कि अल्लाह उन्हें माफ कर दे। अल्लाह बड़ा माफ करने वाला और छोड़ देने वाला है। जो कोई अल्लाह के मार्ग में घर बार छोड़कर निकलेगा, वो धरती में पनाह लेने की बहुत जगह और गुजर बसर के लिए बड़ी गुंजाइश पाएगा। और जो अपने घर से सब कुछ छोड़कर अल्लाह और रसूल की ओर निकले, फिर रास्ते ही में उसकी मौत हो जाए, उसका बदला अल्लाह के जिम्मे अनिवार्य हो गया। अल्लाह बहुत क्षमाशील और दयावान है।
وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَن يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّ الْكَافِرِينَ كَانُوا لَكُمْ عَدُوًّا مُبِينًا وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ فَإِذَا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَائِكُمْ ولتأت طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم وخذوا حذركم إن الله أعد للكافرين عذابا مهينا।
और जब तुम लोग सफर के लिए निकलो तो इसमें कोई हर्ज नहीं अगर नमाज को संक्षिप्त कर दो, विशेषतः जबकि तुम्हें भय हो कि अधर्मी तुम्हें सताएंगे, क्योंकि वे खुल्लम खुल्ला तुम्हारी दुश्मनी पर तुले हुए हैं। और ए नबी, जब तुम मुसलमानों के बीच हो और लड़ाई की हालत में उन्हें नमाज पढ़ाने खड़े हो, तो चाहिए कि उनमें से एक गिरोह तुम्हारे साथ खड़ा हो और अपने हथियार लिए रहे, फिर जब वो सजदा कर ले तो पीछे चला जाए और दूसरा गिरोह जिसने अभी नमाज नहीं पढ़ी है आकर तुम्हारे साथ पढ़े, और वो भी चौकन्ना रहे और अपने हथियार लिए रहे, क्योंकि अधर्मी इस ताक में हैं कि तुम अपने हथियारों और अपने सामानों की ओर से तनिक असावधान हो तो वे तुम पर एक साथ टूट पड़ें। अलबत्ता अगर वर्षा के कारण तकलीफ होती हो या बीमार हो तो हथियार रख देने में कोई हर्ज नहीं, मगर फिर भी चौकन्ने रहो। यकीन रखो कि अल्लाह ने अधर्मियों के लिए अपमानजनक यातना यानी अजाब तैयार कर रखी है।
فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا ولا تهنوا في ابتغاء القوم إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون وترجون من الله ما لا يرجون وكان الله عليما حكيما।
फिर जब नमाज से फारिग हो जाओ तो खड़े और बैठे और लेटे हर हाल में अल्लाह को याद करते रहो, और जब खतरा टल जाए तो पूरी नमाज पढ़ो। नमाज वास्तव में ऐसा फर्ज है जो समय की पाबंदी के साथ ईमान वालों के लिए अनिवार्य किया गया है। इस गिरोह का पीछा करने में कमजोरी ना दिखाओ। अगर तुम तकलीफ उठा रहे हो तो तुम्हारी तरह वे भी तकलीफ उठा रहे हैं, और तुम अल्लाह से उस चीज की उम्मीद रखते हो जिसकी वे उम्मीद नहीं रखते। अल्लाह सब कुछ जानता है और वो गहरी समझ वाला है।
इन्ना अंजलना इलैका अल-किताब बिल-हक लितहकुम बैनन-नास बिमा अराका अल्लाह वला तकुन लिल-खाइनीन खसीमा واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول
ऐ नबी, हमने ये किताब हक के साथ तुम्हारी ओर उतारी है ताकि जो सीधा रास्ता अल्लाह ने तुम्हें दिखाया है उसके अनुसार लोगों के बीच फैसला करो। तुम विश्वासघाती लोगों की ओर से झगड़ने वाले न बनो, और अल्लाह से क्षमा की प्रार्थना करो, वो बड़ा क्षमाशील और दयावान है। जो लोग खुद अपने साथ विश्वासघात करते हैं तुम उनका पक्ष न लो। अल्लाह को ऐसा आदमी पसंद नहीं है जो विश्वासघाती और पापी हो। ये लोग इंसानों से अपनी करतूतों को छिपा सकते हैं मगर अल्लाह से नहीं छिपा सकते। वो तो उस समय भी इनके साथ होता है जब ये रातों को छिपकर उसकी इच्छा के विरुद्ध मशविरे करते हैं। इनके सारे कर्मों को वो अपनी परिधि में लिए हुए है।
أنتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة أم من يكون عليهم وكيلا ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما ومن يكسب إثما فإنما يكسبه على نفسه وكان الله عليما حكيما ومن يكسب خطيئة أو إثما ثم يرمي به بريئا فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا।
हाँ, तुम लोगों ने इन अपराधियों की ओर से सांसारिक जीवन में तो झगड़ा कर लिया, पर कयामत के दिन इनके लिए अल्लाह से कौन झगड़ा करेगा? आखिर वहां कौन इनका वकील होगा? अगर कोई आदमी बुरा काम कर बैठे या खुद अपने पर जुल्म कर जाए और इसके बाद अल्लाह से क्षमा की प्रार्थना करे तो अल्लाह को क्षमाशील और दयावान पाएगा, मगर जो बुराई कमा ले तो उसकी ये कमाई उसी के लिए वबाल होगी। अल्लाह को सब बातों की खबर है और वो गहरी समझ वाला है और सर्वज्ञ है। फिर जिसने कोई खता या गुनाह करके उसका इल्जाम किसी निरपराध पर थोप दिया, उसने तो बड़े लांछन और खुले गुनाह का बोझ समेट लिया।
ولولا فضل الله عليك ورحمته لهمت طائفة منهم أن يضلوك وما يضلون إلا أنفسهم وما يضرونك من شيء وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا لَا خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِّن نَّجْوَاهُمْ إِلَّا مَن أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلَاحٍ بَيْنَ النَّاسِ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا
اے نبی، اگر اللہ کا انگرہ تم پر نہ ہوتا اور اس کی دیالوتا تمہارے ساتھ نہ ہوتی تو ان میں سے ایک گروہ نے تو تمہیں بھرم میں ڈالنے کا فیصلہ کر ہی لیا تھا، حالانکہ واسطو میں وہ خود اپنے سوا کسی کو بھرم میں ڈال نہیں رہے تھے اور تمہارا کوئی نقصان نہیں کر سکتے تھے۔ اللہ نے تم پر کتاب اور حکمت یعنی تتو درشتا اتاری ہے اور تم کو وہ کچھ بتایا ہے جو تم جانتے نہ تھے اور اس کا انگرہ تم پر بہت ہے۔ لوگوں کی خفیہ کانافوسیوں میں بہدھا کوئی بھلائی نہیں ہوتی۔ ہاں اگر کوئی چھپے روپ سے دان یا کسی بھلے کام کے لیے اکسائے یا لوگوں کے معاملے میں سدھار کے لیے کسی سے کچھ کہے تو یہ البتہ بھلی بات ہے، اور جو کوئی اللہ کی خوشی چاہنے کے لیے ایسا کرے گا اسے ہم بڑا بدلہ دیں گے۔ مگر جو آدمی رسول کے ورودھ پر کٹیبدھ ہو اور ایمان والوں کے راستے کے سوا کسی اور راہ پر چلے جبکہ اس پر سیدھا مارگ سپشٹ ہو چکا ہو تو اس کو ہم اسی اور چلائیں گے جدھر وہ خود پھر گیا، اور اسے جہنم میں جھوکیں گے جو سب سے برا ٹھکانہ ہے۔
ان اللہ لا یغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا إن يدعون من دونه إلا إناثا وإن يدعون إلا شيطانا مريدا لعنه الله وقال لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا ولأضلنهم ولأمنينهم ولآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام ولآمرنهم فليغيرن خلق الله ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا أولئك مأواهم جهنم ولا يجدون عنها محيصا۔
اللہ کے یہاں بس شرک یعنی انیکیشور واد ہی کی معافی نہیں ہے، اس کے سوا اور سب کچھ معاف ہو سکتا ہے جسے وہ معاف کرنا چاہے۔ جس نے اللہ کے ساتھ کسی کو ساجی ٹھہرایا وہ تو گمراہی میں بہت دور نکل گیا۔ وہ اللہ کو چھوڑ کر دیویوں کو معبود یعنی اپاس سے بناتے ہیں، وہ اس ودروہی شیطان کو معبود بناتے ہیں जिस पर अल्लाह की फिटकार पड़ी है, वे उस शैतान का कहा मान रहे हैं जिसने अल्लाह से कहा था कि मैं तेरे बंदों से एक निश्चित हिस्सा लेकर रहूंगा, मैं उन्हें बहकाऊंगा, मैं उन्हें कामनाओं में उलझाऊंगा, मैं उन्हें हुक्म दूंगा और वे मेरे हुक्म से जानवरों के कान फाड़ेंगे, और मैं उन्हें हुक्म दूंगा और वे मेरे हुक्म से ईश्वरीय संरचना में परिवर्तन करेंगे। उस शैतान को जिसने अल्लाह के बदले अपना दोस्त और सरपरस्त बना लिया, वो खुले घाटे में पड़ गया। वो इन लोगों से वादे करता है और इन्हें आशाएं दिलाता है, मगर शैतान के सारे वादे धोखे के सिवा और कुछ नहीं हैं। इन लोगों का ठिकाना जहन्नम है, जिससे छुटकारे का कोई उपाय ये ना पाएंगे।
والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا وعد الله حقا ومن أصدق من الله قيلا ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل سوءا يجز به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا واتخذ الله إبراهيم خليلا ولله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله بكل شيء محيطا
رهي وي لوگ جو ایمان لے آئیں اور اچھے کام کریں तो उन्हें हम ऐसे बागों में दाखिल करेंगे जिनके नीचे नहरें बहती होंगी और वे वहां हमेशा हमेशा रहेंगे। ये अल्लाह का सच्चा वादा है और अल्लाह से बढ़कर कौन अपनी बात में सच्चा होगा। परिणाम न तुम्हारी कामनाओं पर निर्भर करता है न किताब वालों की कामनाओं पर। जो भी बुराई करेगा उसका फल पाएगा और अल्लाह के मुकाबले में अपने लिए कोई समर्थक और सहायक ना पा सकेगा। और जो नेक काम करेगा, चाहे मर्द हो या औरत, शर्त यह है कि हो वो ईमान वाला, तो ऐसे ही लोग जन्नत में दाखिल होंगे और उनका तनिक भी हक ना मारा जाएगा। उस आदमी से बेहतर और किसकी जीवन प्रणाली हो सकती है जिसने अल्लाह के आगे सिर झुका दिया और अच्छी से अच्छी नीति अपनाई और एक चित्त होकर इब्राहिम के तरीके का अनुसरण किया, उस इब्राहिम के तरीके का जिसे अल्लाह ने अपना मित्र बना लिया था। आसमानों और जमीन में जो कुछ है अल्लाह का है और अल्लाह हर चीज को अपने घेरे में लिए हुए है।
ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن وترغبون أن تنكحوهن والمستضعفين من الولدان وأن تقوموا لليتامى بالقسط وما تفعلوا من خير فإن الله كان به عليما।
लोग तुमसे औरतों के विषय में फतवा यानी धर्मादेश पूछते हैं, कहो अल्लाह तुम्हें उनके मामले में आज्ञा देता है और साथ ही वे आदेश भी याद दिलाता है जो पहले से तुमको इस किताब में सुनाए जा रहे हैं, अर्थात वे आदेश जो उन यतीम लड़कियों के संबंध में हैं जिनके हक तुम अदा नहीं करते और जिनके निकाह करने से तुम बाज रहते हो या लालच के कारण तुम खुद उनसे निकाह कर लेना चाहते हो, और वे आदेश भी जो उन बच्चों के संबंध में हैं जो बेचारे कोई जोर नहीं रखते। अल्लाह तुम्हें आदेश देता है कि यतीमों के साथ इंसाफ पर कायम रहो, और जो भलाई तुम करोगे वो अल्लाह के ज्ञान से छिपी न रह जाएगी।
وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ وَإِن تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا وَلَن تَسْتَطِيعُوا أَن تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ وَإِن تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا وَإِن يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِّن سَعَتِهِ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا।
اگر کسی عورت کو اپنے پتی سے دُرویوہار یا بیرخی کا خطرہ ہو तो कोई हर्ज नहीं कि पति और पत्नी कुछ हक की कमी बेशी पर आपस में समझौता कर लें। समझौता हर हाल में अच्छा है। मन तंग दिली की ओर जल्दी झुक जाते हैं, लेकिन अगर तुम लोग एहसान की नीति अपनाओ और ईश भय से काम लो तो यकीन रखो कि अल्लाह तुम्हारी इस व्यवहार नीति से बेखबर ना होगा। पत्नियों के बीच पूरा पूरा न्याय करना तुम्हारे बस में नहीं है। तुम चाहो भी तो तुम्हें इसकी सामर्थ्य नहीं हो सकती। अतः ईश्वरीय विधान का मंशा पूरा करने के लिए यह काफी है कि एक पत्नी की ओर इस तरह न झुक जाओ कि दूसरी को अधर में लटकता छोड़ दो। अगर तुम अपनी व्यवहार नीति ठीक रखो और अल्लाह से डरते रहो तो अल्लाह क्षमाशील और दया करने वाला है। लेकिन अगर पति पत्नी एक दूसरे से अलग ही हो जाएं, तो अल्लाह अपनी समाई से हर एक को दूसरे की मोहताजी से बेपरवाह कर देगा। अल्लाह बड़ी समाई वाला है और वो तत्वदर्शी है।
وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ وَإِن تَكْفُرُوا فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ غَنِيًّا حَمِيدًا وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا إن يشأ يذهبكم أيها الناس ويأتي بآخرين وكان الله على ذلك قديرا من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والآخرة وكان الله سميعا بصيرا।
आसमानों और जमीन में जो कुछ है सब अल्लाह ही का है। तुमसे पहले जिनको हमने किताब दी थी उन्हें भी यही आदेश दिया था और अब तुमको भी यही आदेश देते हैं कि अल्लाह से डरते हुए काम करो। लेकिन अगर तुम नहीं मानते तो न मानो। आसमान और जमीन की सारी चीजों का मालिक अल्लाह ही है और वो निस्पृह यानी बेनियाज है, हर प्रशंसा का अधिकारी। हाँ, अल्लाह ही मालिक है उन सब चीजों का जो आसमानों में हैं और जो जमीन में हैं, और काम बनाने के लिए बस वही बहुत है। अगर वो चाहे तो तुम लोगों को हटाकर तुम्हारी जगह दूसरों को ले आए, और उसे इसकी पूरी सामर्थ्य प्राप्त है। जो आदमी सिर्फ दुनिया के सवाब यानी भलाई का इच्छुक हो उसे मालूम होना चाहिए कि अल्लाह के पास दुनिया का सवाब भी है और आखिरत का सवाब यानी भलाई भी, और अल्लाह सुनता और देखता है।
या अय्युहा الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وَإِن تَلُوا أَوْ تُعْرِضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا।
اے لوگو جو ایمان لائے ہو انصاف کے دھوجا واہک اور اللہ کے لیے گواہ بنو, یدیپی تمہارا انصاف اور تمہاری گواہی خود تمہارے اپنے یا تمہارے ماں باپ اور ناتے داروں کے ورودھ ہی کیوں نہ پڑتی ہو, معاملے سے سمبندھ رکھنے والا پکش چاہے مالدار ہو یا غریب, اللہ تم سے ادھک ان کا ہتیشی ہے, اتھا اپنی اچھا کے انپالن میں نیائے سے نہ ہٹو, اور اگر تم نے لگی لپٹی بات کہی یا سچائی سے پہلو بچایا تو جان رکھو کہ جو کچھ تم کرتے ہو اللہ کو اس کی خبر ہے۔
يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا ان الذين امنوا ثم كفروا ثم امنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا بشر المنافقين بان لهم عذابا اليما الذين يتخذون الكافرين اولياء من المؤمنين أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا۔
اے لوگو جو ایمان لائے ہو ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر اور اس کتاب پر جو اللہ نے اپنے رسول پر اتاری ہے اور ہر اس کتاب پر جو اس سے پہلے وہ اتار چکا ہے جس نے اللہ اور اس کے فرشتوں اور اس کی کتابوں اور اس کے رسولوں اور آخرت کے دن کا انکار کیا وہ گمراہی میں بھٹک کر بہت دور نکل گیا, رہے وہ لوگ جو ایمان لائے پھر انکار کیا پھر ایمان لائے پھر انکار کیا پھر اپنے انکار میں بڑھتے چلے گئے, تو اللہ ہرگز ان کو معاف نہ کرے گا اور نہ کبھی ان کو سیدھا مارگ دکھائے گا, اور جو منافق یعنی پاکھنڈی ایمان والوں کو چھوڑ کر अधर्मियों को अपना साथी बनाते हैं उन्हें यह मंगल समाचार सुना दो कि उनके लिए दर्दनाक सजा तैयार है, क्या ये लोग इज्जत की चाह में उनके पास जाते हैं, हालांकि इज्जत तो सारी की सारी अल्लाह ही के लिए है।
وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا الذين يتربصون بكم فإن كان لكم فتح من الله قالوا ألم نكن معكم وإن كان للكافرين نصيب قالوا ألم نستحوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين فالله يحكم بينكم يوم القيامة ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا۔
اللہ اس کتاب میں تم کو پہلے ہی آدیش دے چکا ہے کہ جہاں تم سنو کہ اللہ کی آیتوں کے خلاف ادھرم بکا جا رہا ہے اور ان کی ہنسی اڑائی جا رہی ہے وہاں نہ بیٹھو جب تک کہ لوگ کسی دوسری بات میں نہ لگ جائیں, اب اگر تم ایسا کرتے ہو تو تم بھی انہی کی طرح ہو, وشواس کرو کہ اللہ منافقوں یعنی کپٹاچاریوں اور ادھرمیوں کو جہنم میں ایک جگہ جمع کرنے والا ہے, یہ منافق تمہارے معاملے میں انتظار کر رہے ہیں کہ اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے, اگر اللہ کی اور سے وجے تمہاری ہوئی تو آ کر کہیں گے کہ کیا ہم تمہارے ساتھ نہ تھے, اگر ادھرمیوں کا پلہ بھاری رہا تو ان سے کہیں گے کہ کیا ہمیں تمہارے ورودھ لڑنے کی سامرتھیہ پراپت نہ تھی, اور پھر بھی ہم نے تم کو مسلمانوں سے بچایا, बस अल्लाह ही तुम्हारे और उनके मामले का फैसला कयामत के दिन करेगा। और इस फैसले में अल्लाह ने अधर्मियों के लिए मुसलमानों पर प्रभुत्व पाने की हरगिज कोई राह नहीं रखी है।
المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء
ये मुनाफिक अल्लाह के साथ धोखेबाजी कर रहे हैं, हालांकि वास्तव में अल्लाह ही ने इन्हें धोखे में डाल रखा है। जब ये नमाज के लिए उठते हैं तो कसमसाते हुए सिर्फ लोगों को दिखाने के लिए उठते हैं और अल्लाह को याद थोड़े ही करते हैं। इनकार और ईमान के बीच डावा डोल हैं, न पूरे इस ओर हैं न पूरे उस ओर। जिसे अल्लाह ने भटका दिया हो उसके लिए तुम कोई रास्ता नहीं पा सकते।
या अय्युहल्लज़ीन आमनू ला तत्तखिज़ुल काफिरीन औलिया मिन दूनिल मुमिनीन अतुरीदून अन तजअलू लिल्लाहि अलैकुम सुल्तानन मुबीना إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما।
ऐ लोगो, जो ईमान लाए हो, ईमान वालों को छोड़कर अधर्मियों को अपना साथी न बनाओ। क्या तुम चाहते हो कि अल्लाह को अपने विरुद्ध स्पष्ट तर्क दे दो? विश्वास करो कि मुनाफिक जहन्नम के सबसे नीचे खंड में जाएंगे और तुम किसी को उनका सहायक न पाओगे। अलबत्ता जो उनमें से तौबा कर लें और अपनी नीति को सुधार लें और अल्लाह का दामन थाम लें और अपने दीन को निष्ठापूर्वक अल्लाह ही के लिए कर दें, ऐसे लोग ईमान वालों के साथ हैं और अल्लाह ईमान वालों को जरूर बड़ा बदला प्रदान करेगा। आखिर अल्लाह को क्या पड़ी है कि तुम्हें अकारण सजा दे? अगर तुम शुक्रगुजार बंदे बने रहो और ईमान की नीति पर चलो, अल्लाह बड़ा गुणग्राहक और सबके हाल से परिचित है।
لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم وكان الله سميعا عليما إن تبدوا خيرا أو تخفوه أو تعفوا عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا والذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين أحد منهم أولئك سوف يؤتيهم أجورهم وكان الله غفورا رحيما।
अल्लाह इसको पसंद नहीं करता कि आदमी अपशब्द के साथ जबान खोले। ये और बात है कि किसी पर जुल्म किया गया हो और अल्लाह सब कुछ सुनने और जानने वाला है। अगर तुम पर जुल्म हुआ है तो यद्यपि तुम्हें हक है कि बुराई बयान करो, लेकिन अगर तुम खुले और छिपे में भलाई ही किए जाओ या कम से कम बुराई को माफ कर दो, तो अल्लाह का गुण भी यही है कि वो बड़ा माफ करने वाला है, हालांकि सजा देने की पूरी सामर्थ्य उसे प्राप्त है। जो लोग अल्लाह और उसके रसूलों के साथ इनकार की नीति अपनाते हैं और चाहते हैं कि अल्लाह और उसके रसूलों के बीच अंतर करें और कहते हैं कि हम किसी को मानेंगे और किसी को न मानेंगे, और इनकार और ईमान के बीच में एक राह निकालना चाहते हैं, वे सब पक्के अधर्मी हैं, और ऐसे अधर्मियों के लिए हमने वो सजा तैयार कर रखी है जो उन्हें अपमानित कर देने वाली होगी। इसके विपरीत जो लोग अल्लाह और उसके सभी रसूलों को माने और उनके बीच अंतर न करें, उनको हम जरूर उनका बदला देंगे, और अल्लाह बड़ा माफ करने वाला और रहम करने वाला है।
يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء فقد سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا أرنا الله جهرة فأخذتهم الصاعقة بظلمهم ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البينات فعفونا عن ذلك وآتينا موسى سلطانا مبينا ورفعنا فوقهم الطور بميثاقهم وقلنا لهم ادخلوا الباب سجدا وقلنا لهم لا تعدوا في السبت وأخذنا منهم ميثاقا غليظا
اے نبی، یہ کتاب والے اگر آج تم سے مانگ رہے ہیں کہ تم آسمان سے کوئی لیکھ उन पर अवतरित कराओ, तो इससे बढ़ चढ़कर अपराध जनक मांगें ये पहले मूसा से कर चुके हैं। उससे तो इन्होंने कहा था कि हमें अल्लाह को खुल्लम खुल्ला दिखा दो, और इसी सरकशी के कारण अचानक इन पर बिजली टूट पड़ी थी। फिर इन्होंने बछड़े को अपना माबूद यानी उपास्य बना लिया, हालांकि ये खुली खुली निशानियां देख चुके थे। इस पर भी हमने इन्हें माफ किया, हमने मूसा को स्पष्ट आदेश प्रदान किया था, और इन लोगों पर तूर पर्वत को उठाकर इनसे उस आदेश के अनुपालन का पक्का वादा लिया था। हमने इनको आदेश दिया कि दरवाजे में सजदा करते हुए दाखिल हो। हमने इनसे कहा कि सब्त का कानून न तोड़ो, और इस पर इनसे पक्का वादा लिया।
فَبِمَا نَقُضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ وَكُفْرِهِمْ بِآيَاتِ اللَّهِ وَقَتْلِهِمُ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ وَقَوْلِهِمْ قُلُوبُنَا غُلْفٌ بَلْ طَبَعَ اللَّهُ عَلَيْهَا بِكُفْرِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا وَبِكُفْرِهِمْ وَقَوْلِهِمْ عَلَى مَرْيَمَ بُهْتَانًا عَظِيمًا وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا
आखिरकार इनके प्रतिज्ञा भंग करने के कारण और इस कारण कि इन्होंने अल्लाह की आयतों को झुठलाया और अनेक पैगंबरों को नाहक कत्ल किया, और यहाँ तक कहा कि हमारे दिल आवरणों में सुरक्षित हैं, हालांकि वास्तव में इनके अधर्म के कारण अल्लाह ने इनके दिलों पर ठप्पा लगा दिया है, और इसी कारण ये बहुत कम ईमान लाते हैं। फिर अपने इनकार में ये इतने बढ़े कि मरियम पर बड़ा लांछन लगाया और खुद कहा कि हमने मसीह ईसा मरियम के बेटे अल्लाह के रसूल का कत्ल कर दिया है, हालांकि वास्तव में इन्होंने न उसकी हत्या की न सूली पर चढ़ाया, बल्कि मामला इनके लिए संदिग्ध कर दिया गया, और जिन लोगों ने इसके विषय में मतभेद किया है वे भी वास्तव में शक में पड़े हुए हैं। उनके पास इस मामले में कोई ज्ञान नहीं है, सिर्फ अटकल पर चल रहे हैं। उन्होंने मसीह को यकीनन कत्ल नहीं किया, बल्कि अल्लाह ने उसको अपनी ओर उठा लिया। अल्लाह जबरदस्त ताकत रखने वाला और तत्वदर्शी है।
الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا وأخذهم الربا وقد نهوا عنه وأكلهم أموال الناس بالباطل وأعتدنا للكافرين منهم عذابا أليما لكن الراسخون في العلم منهم والمؤمنون يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك والمقيمين الصلاة والمؤتون الزكاة والمؤمنون بالله واليوم الآخر أولئك سنؤتيهم أجرا عظيما
और किताब वालों में से कोई ऐसा ना होगा जो उसकी मौत से पहले उसको मान ना लेगा और कयामत के दिन वो उस पर गवाही देगा। सारांश ये कि इन यहूदियों की इसी अत्याचार पूर्ण नीति के कारण और इस कारण कि ये बहुधा अल्लाह के मार्ग से रोकते हैं और ब्याज लेते हैं जिससे इन्हें रोका गया था और लोगों के माल नाजायज तरीकों से खाते हैं। हमने बहुत सी अच्छी पाक चीजें इनके लिए हराम यानी अवैध कर दी जो पहले इनके लिए हलाल यानी वैध थी और जो लोग इनमें से इनकार करने वाले हैं उनके लिए हमने दर्दनाक अजाब तैयार कर रखा है मगर उनमें जो लोग ज्ञान में पक्के हैं और ईमानदार हैं वे सब उस शिक्षा पर ईमान लाते हैं जो ऐ नबी तुम्हारी ओर उतारी गई है और जो तुमसे पहले उतारी गई थी। इस तरह के ईमान लाने वाले और नमाज और जकात की पाबंदी करने वाले और अल्लाह और आखिरत के दिन पर सच्चा ईमान रखने वाले लोगों को हम जरूर ही बड़ा बदला देंगे।
وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان وآتينا داود زبورا ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك وكلم الله موسى تكليما
ऐ नबी हमने तुम्हारी ओर उसी तरह वही यानी प्रकाशना भेजी है जिस तरह नूह और उसके बाद के पैगंबरों की ओर भेजी थी। हमने इब्राहिम इस्माइल इसहाक याकूब और याकूब की संतान ईसा अय्यूब यूनुस हारून और सुलेमान की ओर प्रकाशना भेजी। हमने दाऊद को जबूर दी। हमने उन रसूलों पर भी प्रकाशना भेजी जिनकी चर्चा हम इससे पहले तुमसे कर चुके हैं और उन रसूलों पर भी जिनकी चर्चा तुमसे नहीं की। हमने मूसा से इस तरह बातचीत की जिस तरह बातचीत की जाती है।
لكن الله يشهد بما أنزل إليك أنزله بعلمه والملائكة يشهدون وكفى بالله شهيدا إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله قد ضلوا ضلالا بعيدا إن الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا إلا طريق جهنم خالدين فيها أبدا وكان ذلك على الله يسيرا
ये सारे रसूल खुशखबरी देने वाले और डराने वाले बनाकर भेजे गए थे ताकि उनको भेज देने के बाद लोगों के पास अल्लाह के मुकाबले में कोई तर्क ना रहे और अल्लाह हर हाल में प्रभावशाली और तत्वदर्शी है। लोग नहीं मानते तो ना माने मगर अल्लाह गवाही देता है कि ऐ नबी जो कुछ उसने तुम पर उतारा है अपने ज्ञान से उतारा है और इस पर फरिश्ते भी गवाह हैं। यद्यपि अल्लाह का गवाह होना बिल्कुल काफी है। जो लोग इसको मानने से खुद इनकार करते हैं और दूसरों को अल्लाह के रास्ते से रोकते हैं, वे यकीनन गुमराही में हक से बहुत दूर निकल गए हैं। इस तरह जिन लोगों ने इनकार और विद्रोह की नीति अपनाई और अन्याय और अत्याचार पर उतर आए, अल्लाह उनको हरगिज माफ न करेगा और उन्हें कोई मार्ग जहन्नम के मार्ग के सिवा न दिखाएगा जिसमें वे हमेशा रहेंगे। अल्लाह के लिए ये कोई कठिन काम नहीं है।
या अय्युहा अन्नास क़द जाअकुमुर रसूलु बिल हक़्क़ि मिन रब्बिकुम फ़आमिनू खैरन लकुम وَإِن تَكْفُرُوا فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا।
लोगो, ये रसूल तुम्हारे पास तुम्हारे रब की ओर से सत्य लेकर आ गया है, ईमान ले आओ, तुम्हारे ही लिए बेहतर है। और अगर इनकार करते हो तो जान लो कि आसमानों और जमीन में जो कुछ है सब अल्लाह का है और अल्लाह सब कुछ जानने वाला भी है और गहरी समझ वाला भी।
या अहलल किताब ला तगलू फी दीनकुम वला तकुलू अला अल्लाह इल्ला अल-हक इन्नमल मसीह ईसा बिन मरियम रसूलुल्लाह व कलिमतुहु अल्काहा इला मरियम व रूहुम मिन فآمنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خيرا لكم إنما الله إله واحد سبحانه أن يكون له ولد له ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا।
اے کتاب والو, اپنے دین میں حد سے آگے نہ بڑھو اور اللہ سے لگا کر ستی کے سوا कोई बात न कहो। मसीह मरियम का बेटा ईसा इसके सिवा कुछ न था कि अल्लाह का एक रसूल था और एक आदेश था जो अल्लाह ने मरियम की ओर भेजा, और एक आत्मा थी अल्लाह की ओर से जिसने मरियम के गर्भ में बच्चे का रूप धारण किया। अतः तुम अल्लाह और उसके रसूलों को मानो और न कहो कि तीन हैं। बाज आ जाओ, ये तुम्हारे ही लिए बेहतर है। अल्लाह तो बस एक ही ईश्वर है, वो पाक है इससे कि कोई उसका बेटा हो। जमीन और आसमानों की सारी चीजों का वही मालिक है और उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति और उनकी खबर रखने के लिए बस वही काफी है।
وَمَن يَسْتَنكِفْ عَن عِبَادَتِهِ وَيَسْتَكْبِرْ فَسَيَحْشُرُهُمْ إِلَيْهِ جَمِيعًا فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ وَيَزِيدُهُمْ مِنْ فَضْلِهِ وَأَمَّا الَّذِينَ اسْتَنكَفُوا وَاسْتَكْبَرُوا فَيُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا وَلَا يَجِدُونَ لَهُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا।
मसीह ने कभी इस बात को अपने लिए बुरा नहीं समझा कि वो अल्लाह का बंदा हो, और ना निकटवर्ती फरिश्ते इसको अपने लिए बुरा समझते हैं। अगर कोई अल्लाह की बंदगी को अपने लिए बुरा समझता है और घमंड करता है तो एक समय आएगा जब अल्लाह सबको घेर कर अपने सामने हाजिर करेगा। उस समय वे लोग जिन्होंने ईमान लाकर अच्छे काम किए हैं अपनी मजदूरियां पूरी पूरी पाएंगे और अल्लाह अपने अनुग्रह से उन्हें और अधिक मजदूरी देगा, और जिन लोगों ने बंदगी को बुरा समझा और घमंड किया है उनको अल्लाह दर्दनाक सजा देगा। और अल्लाह के सिवा जिन जिन की सरपरस्ती और सहायता पर वे भरोसा रखते हैं उनमें से किसी को भी वे वहां न पाएंगे।
या अय्युहा अन्नास क़द जाअकुम बुरहानुम मिन रब्बिकुम व अन्ज़लना इलैकुम नूरन मुबीना فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به فسيدخلهم في رحمة منه وفضل ويهديهم إليه صراطا مستقيما।
लोगो, तुम्हारे रब की ओर से तुम्हारे पास खुला प्रमाण आ गया है और हमने तुम्हारी ओर ऐसा प्रकाश भेज दिया है जो तुम्हें साफ साफ रास्ता दिखाने वाला है, अब जो लोग अल्लाह की बात मान लेंगे और उसकी पनाह ढूंढेंगे, उनको अल्लाह अपनी रहमत और अपने अनुग्रह व अनुदान के दामन में ले लेगा और अपनी ओर आने का सीधा मार्ग उनको दिखा देगा।
يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين يبين الله لكم أن تضلوا والله بكل شيء عليم।
ऐ नबी, लोग तुमसे उनके बारे में आदेश मालूम करना चाहते हैं जिनके प्रत्यक्ष वारिस न हो। कहो, अल्लाह तुम्हें आदेश देता है। अगर कोई आदमी बिना औलाद मर जाए और उसकी एक बहन हो तो वो उसके छोड़े हुए माल में से आधा पाएगी, और अगर बहन बिना औलाद मरे तो भाई उसका वारिस होगा। अगर मरने वाले की वारिस दो बहनें हों तो वे तरके में से दो तिहाई की हकदार होंगी, और अगर कई भाई बहनें हों तो औरतों का इकहरा और मर्दों का दोहरा हिस्सा होगा। अल्लाह तुम्हारे लिए आदेशों को स्पष्ट करता है ताकि तुम भटकते ना फिरो, और अल्लाह को हर चीज का ज्ञान है।